बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग विचारों की दृढ़ता और स्थिरता के लिए, विचारों की निरंतरता कैसे बनी रहे और कौन कौन से विचार हमारे जीवन में अधिक अभ्यास में आते रहे, इस पर विचार कर रहे हैं। संसार में संयोग नाशवान है, संसार में कोई भी हमें मृत्यु से बचाने वाला नहीं है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और संसार में संयोग वियोग जनित सुख और दुख निरंतर जीव को भोगना पड़ते हैं और उसे अकेले ही भोगना पड़ते हैं, उसकी देह भी उसका साथ नहीं दे सकती है। देह के साथ रहने वाला रहे पर देह उसके साथ सदा नहीं रहती है। देह में रहने वाला सदा रहता है, लेकिन जिस देह में वह देही कुछ दिन के लिए ठहरता है, वह देह भी हमसे पृथक है। और इतना ही नहीं, वह देह अपवित्र भी है। आज इस बात का विचार हमें बहुत दृढ़ता से करना है, ताकि ये विचार हमारे जीवन को परिवर्तित कर सके। विचारों की दृढ़ता ठीक ऐसी है जैसे कि कोई रगरेज अपने यहां पर विभिन्न प्रकार के रंग के कपड़ों को रंग करके और लोगों को बेचा करता है। ठीक ऐसे ही, चाहे जिस रंग का कपड़ा हो, आप उस पर अपने मन चाहे रंग को चढ़वा सकते हैं। हमारे अपने विचारों का भी यही है। हम निरंतर अपने विचारों को जिस रंग में रंगना चाहें उस रंग में रंग सकते हैं। हम संसार के रंग में अपने विचारों को रंग लें तो वो विचार हमारे संसार बढ़ाने वाले हो जाते हैं। हम उन्हें वितरागता के रंग में रंग लें या कि भक्ति के रंग में रंग लें तो वे विचार हमारे लिए संसार से पार भी कराने वाले हैं। हमें विचारों को रंगरेज की तरह रंगने का अभ्यास तो है। हम जिस चाहे विचार जिस चाहे रंग में रंग सकते हैं, लेकिन सावधानी हमारी होनी चाहिए कि संसार का कोई रंग न चढ़े। एक ऐसा रंग मेरे ऊपर हमेशा मेरे विचारों में बना रहे। वीतरागता का विचार या वीतरागता का रंग इतना सुदृढ़ हो कि उस पर ये सांसारिक राग द्वेष का रंग ज्यादा देर तक न चढ़े। क्षणिक है सो क्षणिक ही रहा है। ये काम अनुप्रेक्षा करती है, डीकलराइजेशन का काम करती है। वो अपने ओरिजिनल जो रंग है उसको बरकरार रखती है और शेष जो सांसारिक रंग है उनको नहीं चढ़ने देती है। ये काम अनुप्रेक्षा या की बारे भावना करती है। और इतना ही नहीं, जैसे कि कोई रथ में बैठ करके अपने गंतव्य तक जाता है, तब उसमें न रथ महत्वपूर्ण है न उसमें बैठा हुआ व्यक्ति उतना महत्वपूर्ण है। उसमें महत्वपूर्ण है जो उस रथ को ले जा रहा है। सारथी महत्वपूर्ण है। रथ और रथी दोनों किसके हाथ में है? सारथी के हाथ में। ये देखना कि कौन हमारे इस जीवन का सारथ करता है, ये महत्वपूर्ण है। हमारे अपने विचार हमारे जीवन का सारत्व करते हैं, और विचार यदि विवेक युक्त हैं तो वे विचार हमें हमारे गंतव्य तक ले जा सकते हैं। रथ तो शरीर की तरह है और उसमें बैठी हुई चेतना वह रथी है, लेकिन उस चेतना का जो विवेक है वो पूरे के पूरे जीवन का सारथ्य करता है। सारथी हमारा अपना विवेक है। तो विचार तो सबके पास हैं, बहुत जीव हैं जो कि विचारवान हैं, लेकिन उन विचारों में विवेक का समन्वय हो तब वे विचार हमारे अपने जीवन को ऊंचा उठाने में, अच्छा बनाने में कारण बनते हैं। हम इन 12 भावनाओं और अनुपेक्षाओं के निरंतर चिंतन से दो चीजें कर रहे हैं। हम अपने विचारों को इतना सुदृढ़ बनाएं जिससे कि उन पर किसी अन्य मलिनताओं का रंग ना चढ़े, संसार का रंग ना चढ़े, राग द्वेष उन विचारों में ज्यादा ना मिले, और दूसरा हमारे विचार बहुत विवेकपूर्ण विचार हों। बहुत सोच, अपन कहते हैं कि बहुत सोच हमारा ठीक होना चाहिए। जब सोच हमारा ठीक होगा तो ही हमारे आचरण को हम ऊंचा उठाने में सक्षम हो पाएंगे। बाह्य में बहुत लोग हैं जो आचरण का पालन करते हैं, बाह्य में बहुत लोग हैं जो कि अच्छे अच्छे श्रेष्ठ विचार रखने वाले हैं, लेकिन विचार और उस बाह्य आचरण के बीच का जो संतुलन है वो कौन करता है? वो हमारे अपना विवेक है। विवेकवान व्यक्ति होगा तो वो विचार और आचरण के बीच का संतुलन बना के रखेगा। प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच का संतुलन जैसे बिना विवेक के संभव नहीं है, इसी तरह से हमारे विचार और हमारे आचरण के बीच का संतुलन विवेक के द्वारा। वो विवेक कौन उत्पन्न करता है? वो विवेक निरंतर जो विचार की प्रक्रिया है, 12 भावना, वो हमारे भीतर ऐसा विवेक जागृत करती है। हम उसी प्रक्रिया से अपने विचारों को संभालने का उपक्रम कर रहे हैं। एक विचार है कि देह मेरी है, ठीक है, मैं देह में रहता हूं, लेकिन देह में रहने के बावजूद भी मेरा और देह का स्वरूप अलग अलग है। ये मुझे बहुत स्पष्ट हो गया है, देह मेरी है लेकिन वह कितनी देर के लिए मेरी है? वो एक जीवन के लिए है, वो शाश्वत नहीं है। मैं जिस देह में जाता हूं उस देह को मुझे अपनी मानना पड़ता है, वास्तव में देह मेरी है नहीं। ये देह से पृथकता का विचार मुझे देह से अनाशक्त करता है, लेकिन इसके बावजूद भी कभी कभी देह से आशक्ति हो जाती है। कई लोगों की तो पूरे जीवन की जो आयु की अवस्था है या आयु का जो जितना समय है वो पूरा का पूरा देह के इर्द गिर्द घूमते हुए ही निकल जाता है। अपनी या दूसरे की देह, और अपनी और दूसरे की देह के प्रति आसक्ति, या दूसरे की और अपनी देह के प्रति ग्लानि घृणा, और या कि उसके पोषण संरक्षण संवर्धन, इन सब में पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। इसलिए आचार्य भगवंत एक विचार दे रहे हैं कि देह का स्वभाव अपावन है, इस बात का ध्यान रख के फिर देह का सदुपयोग करना। दो चीजें हो गई, देह अपावन अथिर घिनावन, या में सार न कोई, सागर के जलसों सुचि कीजिए तो भी शुद्ध न हो। ये कहकर के हमें देह की वास्तविकता बता रहे हैं। ना हमें देह से घृणा करने का उपदेश दिया जा रहा है, ना देह में आसक्त होने का उपदेश दिया जा रहा है, देह की वास्तविकता को जानने का उपदेश है। और इतना कहने के बाद भी मन में आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस देह का सदुपयोग करने से चूक जाए, तो और जोड़ देते हैं लाइन कि काना पौड़ा पड़ा हाथ ज्यों चूसे तो रोवे, फले अनंत जू धर्म ध्यान की भूमि विषय। अब पूरी बात लगती है कि हो गई। और कभी कभी कोई चूकने लगे तो उसके लिए और जरा सा इशारा करते हैं कि दुर्जन देह दुभाव स्वभाव बराबर, ध्यान रखना। इतनी सब बातें देह के बारे में कह करके और हमें किस तरफ ले जाना चाहते हैं इस विचार के माध्यम से। पहली चीज कि मेरे भीतर देह के प्रति आसक्ति, मुझे देह को ही अच्छा बनाने, देह को ही पवित्र बनाने की तरफ ले जाती है। इसलिए मेरी देहाशक्ति घटाने का सबसे अच्छा उपाय है कि मैं देह की अपवित्रता को समझ लूं, उसे कितना भी पवित्र बनाने के लिए सागर का जल भी उपयोग में ले लूं तब भी वो पवित्र नहीं होगी। यह विचार मुझे देहाशक्ति से बचाएगा, अपनी और दूसरे की, दोनों ही चीज। और फिर देह का सदुपयोग कैसे किया जाए, इसके लिए भी इसी में से विचार निकालना पड़ेगा। तो काना पौड़ा पड़ा हाथ ज्यों चूसे तो रोपे, भाई ये देह तो काने पौड़े की तरह है, जैसे कि गन्ने में कीड़ा लग जाता है और लाल लाल एक धारा ऊपर से नीचे तक हो जाती है, वो गन्ना पौड़ा मतलब गन्ना, वो खाते हैं तो उसमें कोई रस नहीं मिलता और कड़ा इतना हो जाता है कि खाएं तो बहुत दांतों में तकलीफ होती, आंसू आ जाते हैं। तो कहते चूसे तो रोवे, ये तो ऐसे गन्ने की तरह है जिसमें कि कीड़ा लग गया है, जिससे कि वो खराब हो गया है। ठीक ऐसे ही ये देह तो अन्न का कीड़ा है। हां ऐसा उपमा दे रहे हैं इस देह के लिए, तो फिर क्या करें, इससे घृणा करें? नहीं, ठहरो, अभी दूसरी लाइन है, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय भोग है। ये काना पौड़ा भी है अगर तो इसको फेंक मत देना, ये व्यर्थ है, काम का नहीं है, ऐसा जान करके इसका अपव्यय नहीं करना, इसका सदुपयोग कर लेना। अगर इसको हम छोटे छोटे टुकड़े करके और जमीन में बो दें तो इसी में से अच्छे गन्ने निकलेंगे और वो बहुत रस देंगे, बहुत फलवान होंगे। ये जो काना पौड़ा है वो भी बहुत फलवान हो सकता है। ये जो हमारी देह है जो कि अन्न का कीड़ा है, जब तक इसे मिलता है तब तक ये अच्छी भली जान पड़ती है और रुग्ण हो जाने पर, अस्वस्थ हो जाने पर यह देह ही हमारे लिए बोझ हो जाती है। ऐसा विचार हमारे भीतर आए, बना रहे, तो फिर क्या स्थिति बनेगी? निरंतर अपनी और दूसरे की देह से अनाशक्ति और साथ साथ देह के उपयोग करने की भावना बनी रहेगी। इस देह का मैं सदुपयोग कर लूं, इसे अगर मैं चूसता हूं अर्थात इसे भोग विलास में लगाता हूं तो ये तो काने पौड़ी की तरह है, रोना पड़ेगा मुझे। मैं अगर इसे विषय कषाय में लगाए रखता हूं, इस देह के माध्यम से विषय कषाय ही बढ़ाता हूं तो इससे तो मेरा कोई लाभ नहीं होने वाला। अगर मैं इसे फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे, जैसे गन्ने को श्रेष्ठ भूमि में बो देने पर बहुत फलवान होता है, ऐसे ही इस देह को भी अगर धर्म ध्यान की भूमि में बो दिया जाए अर्थात इसके माध्यम से धर्म ध्यान कर लिया जाए तो अनंत फल अर्थात मोक्ष फल की भी प्राप्ति इसी देह से, वो भी विशेष रूप से मनुष्य की देह से। और बाकी देह कोई किसी की धारण की होती तो कोई गुंजाइश नहीं थी उस देह के द्वारा। ऐसा श्रेष्ठ विचार अगर हमारे मन में निरंतर बना रहे तो हम आसानी से इस देह में रह करके भी देह में आशक्त हुए बिना और देह का सदुपयोग कर सकेंगे। वरना इस देह में कुछ भी सारभूत नहीं है, हम व्यर्थ ही इसके रूप का या इसके स्वस्थ होने का, इसके कांतिमान होने का उपक्रम करते हैं और जब ये कांतिमान दिखाई पड़ने लगती है, अच्छी सुंदर होती है, तो मैं इसका अभिमान कर लेता हूं। ये अगर मलिन हो जाती है, ये अगर अस्वस्थ हो जाती है, तो ये बोझ बन जाती है, मेरे लिए संकलेश में कारण बनती है। ये दोनों काम करती है, मेरे अहंकार में भी कारण बनती है और मेरे संकलेश में भी कारण बनती है, यानी कुल मिला के संसार बढ़ाने के लिए ही ये कारण बन सकती है, अगर मैं थोड़ा सा भी असावधान हो जाऊं। इसका अभिमान नहीं करना चाहिए देह का, और दूसरे की देह को देख करके उससे घृणा भी नहीं करना चाहिए, दूसरे की देह से आसक्ति नहीं करना चाहिए, ये तो है ही, दूसरे की देह से घृणा भी नहीं करना चाहिए। दो छोटे छोटे उदाहरण सुनाता हूं, उससे बात बहुत स्पष्ट हो जाएगी। शायद कहीं मन में कभी ऐसा भाव आने लगे तो ये उदाहरण याद आ जाएगा, तो अपन समझ जाएंगे। बहुत बड़े राजा साहब थे, कहां के थे, कैसे थे, ये तो हमें नहीं मालूम, नाम वाम याद नहीं रहते अपन को। बहुत बड़े राजा थे, बड़ा उनका परिकर था, कई कई तो मंत्री थे उनके, बाप भारी वैभव था, सेना थी। अब क्या हुआ कि एक साधु बाबा जी आए दरबार में, तो साधु बाबा जी के तो वैसे ही शरीर तपस्या की वजह से क्षीण हो गया था और मलिन तो था ही, लेकिन थे तपस्वी, तो तपस्वी को देख करके राजा साहब ने खड़े होकर के उन्हें सम्मान दिया और माथा झुकाया, बाकी जितने लोग थे उनको अच्छा नहीं लगा। जिसको सिर्फ देह देखने की ही आदत है और देह के भीतर बैठी हुई आत्मा की पवित्रता नहीं दिखती है, उसे तो ऐसा ही होगा। पर राजा साहब तपस्वी की देह नहीं देख रहे थे, वे उसके भीतर के गुणों को देख रहे थे, और गुण प्रीतिर मता, उनकी बुद्धि में गुणों से प्रेम था, देह शक्ति नहीं थी, न देह अपनी देह का अभिमान था, इसलिए प्रणाम किया, माथा झुका दिया। मंत्री ने, जो कि अच्छे सलाहकार होते हैं मंत्री ऐसा माना जाता है, तो मंत्री ने बाद में कहा कि राजन आपका ये व्यवहार आपके राजपद के योग्य नहीं है, आपको एक साधारण से दीनहीन दिखाई देने वाले उस व्यक्ति को माथा झुकाने की क्या आवश्यकता है, आप इतने महान राजा हैं। राजा चुप रहे, कुछ नहीं कहा, सुन लिया। कुछ दिन के बाद राजा ने मंत्री जी से कहा कि मेरा एक काम करके आओगे, आज आप ही को यह काम करना है, बताएं राजन। कुछ सिर हैं हमारे पास जिनको कि बेचने जाना है बाजार में, बताएं राजन। तो हाथी का सिर था, हिरण का सिर था, शेर का सिर था, जानवरों के बहुत सुंदर सुंदर से सिर थे, बिकते हैं ना बाजार में, अपन लोग सौ पीस की तरह खरीद के लाते हैं, घरों में लगा लेते हैं, इतना सिंह का से वो लगा लिया, और उसी के साथ साथ एक मनुष्य का भी सिर था। जाओ मंत्री जी आज बाजार में, इनको बेच करके आओ। मंत्री जी सारे दिन, कभी दुकान चलाने का अनुभव तो था नहीं, बैठे रहे धीरे धीरे करके, और सारे सिर बिक गए, एक ही बचा रहा, मनुष्य का सिर किसी ने नहीं खरीदा। कोई अपने घर में सोपीस की तरह मनुष्य का सिर लगाने तैयार नहीं हुआ, बाकी सब जानवरों के सिर खरीदे गए। और वापस जब मंत्री जी लौट करके आए, राजा ने पूछा कि सारे सिर बिक चुके, उन्होंने कहा और तो सब बिक गए, ये सिर्फ मनुष्य का सिर किसी ने नहीं खरीदा। राजा ने कहा मंत्री जी उस दिन का जवाब आज देना चाहता हूं, जिस सिर के झुका लेने पर आप सब नाराज हुए थे कि ये सिर उस दीनहीन के सामने झुका दिया, आज आपको समझ में आया कि इस सिर की कितनी कीमत है, किसी ने खरीदने तक से इनकार कर दिया,
फिर इसको अगर मैंने झुका दिया तो ऐसी कौन सी बड़ी चीज होने वाली, कल के दिन मेरी भी ये स्थिति होगी। आज ये सिर भले ही इस देह पर है, इसमें बैठी हुई चेतना राजा कहलाती है, इसलिए आप इसका अभिमान करने के लिए मुझे कह रहे हैं। मुझे इस देह का अभिमान नहीं है, उसमें बैठी हुई चेतना अगर निर्मल है तो ही हमारी इस देह की कहना चाहिए वास्तविक उपयोगिता है, वरना तो ये देह ऐसी ही स्थिति में पड़ी रह जाएगी, कोई उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, छुएगा भी नहीं। अपनी ही देह जब मलिन हो जाती है तो हम ही छूना नहीं पसंद करते, और अपनी ही देह में से जब चेतना निकल जाती है तो कोई और भी उसे छूना नहीं पसंद करता, और अगर छू जाती है तो ना क्या आ जाए। यह देह की अवस्था है, यह देह का स्वरूप है। इस देह के स्वरूप की तरफ ध्यान जाने से और देह के प्रति जो अभिमान है या देह के प्रति जो आसक्ति है वो घटती है। और एक चीज और है, देह के प्रति घृणा भी नहीं सिखा रहे आचार्य भगवंत। उसके लिए एक छोटा सा उदाहरण ले लें, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। राजा जनक विद्वानों के बहुत चहेते थे, वो स्वयं भी विद्वानों को बहुत सम्मान देते थे, विद्वान भी वहां उन्हें बहुत चाहते थे। कि राजा जनक स्वयं विद्वान थे तो विद्वानों की एक सभा बुलाई गई, बहुत विद्वान आए। अष्टावक्र उन दिनों बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे। अष्टावक्र की महागीता कभी पढ़िएगा, उन्होंने समय सार पढ़ा हो ऐसा मालूम पड़ता है। दोनों को मिला करके देखिएगा तो मालूम पड़ता है कि जैसे समय सार पढ़ने वाले ने अपने विचार व्यक्त किए हो, आप आश्चर्य करेंगे। गणेश प्रसाद जी वर्णी को बहुत प्रिय था समय सार। अमृतचंद्र आचार्य महाराज की टीका जो संस्कृत की है, आज जिसके अर्थ संस्कृत के संस्कृत में लगाना कठिन है, वो उनको कंठस्थ थी, और उसके साथ साथ उन्होंने अष्टावक्र की गीता का भी अध्ययन किया था। तो कहते थे कि ऐसा लगता कि जैसे अष्टावक्र कुंदकुंद आचार्य महाराज के चरणों में बैठ करके अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त किया हो। उनकी चर्चा कर रहा हूं, लेकिन उनकी देह ऐसी थी अष्टावक्र की कि इतनी बेडौल कि देख करके हंसी आए बिना नहीं रहेगी, बहुत बेडौल शरीर था। और वे जैसे ही जनक की सभा में पहुंचे और वहां जितने विद्वान थे, किसी ने दबी आवाज में, किसी ने खुल करके और हंसना शुरू कर दिया। और अष्टावक्र 20 सभा में पहुंच करके खुद भी बहुत जोर से हंसे। जैसे ही वे बहुत जोर से हंसे सारी सभा में सन्नाटा खिंच गया। राजा भी चकित होकर के उनके सम्मान के लिए खड़ा हो गया कि पधारें भगवान, क्या गलती हुई, आप इतना ठहाका लहाक लगा करके हंसे, आप अपने हंसने का कारण बताएं। तो अष्टावक्र ने कहा कि मैं तो पहले आपके सभासद क्यों हंसे ये जानना चाहता हूं। तो सभासदों में से कोई भी हिम्मत नहीं कर पाया ये कहने की कि आप बहुत बेडौल शरीर वाले हैं इसलिए हमें हंसी आ गई। वे स्वयं ही बोले अष्टावक्र कि आपके सभासद मेरी देह के बेडौल पने को देख करके हंसे हैं, और मुझे तो हंसी इस बात पर आई है कि राजा जनक तो विद्वानों का सम्मान करता है और मुझे विद्वानों की सभा में बुलाया गया था, यहां कैसे मैं चर्मकारों की सभा में आ गया हूं, इसलिए मैं हंसा था। तो लोग बहुत मुश्किल में पड़े कि अरे विद्वानों को आप चर्मकार कह रहे हैं? बोले हां, विद्वान तो वो है जिसकी दृष्टि आत्मज्ञान पर है, विद्वान जिसकी आत्मा के स्वरूप पर दृष्टि है वो है विद्वान या पंडिता। क्या कहते हैं जब परमात्मा स्तोत्र पढ़ते हैं कि कौन है पंडित, जो देह और आत्मा के पृथककरण की प्रक्रिया जानता है वो पंडित है। विद्वान वो है, और जो सिर्फ देह को ही देखता है कि वो सुंदर है कि बेडौल है कि कुरूप है, तो वो तो चर्मकार ही है, उसी की हड्डी चमड़े पर दृष्टि रहती, उसकी चेतना वेतना से उसको मतलब ही नहीं है। चेतना के प्रति जिसके मन में सम्मान है वो देह से घृणा भी नहीं करेगा और देह का अभिमान भी नहीं करेगा, देह से आसक्ति भी नहीं करेगा। हमें इस भावना का चिंतन इसलिए करना चाहिए ताकि देह का अभिमान घटे, देह से आसक्ति घटे और देह के प्रति जो हमारा घृणा का भाव है वो भी घटे, देह के स्वरूप को जान करके। और हम क्या करें अब, उस देह का सदुपयोग करें। सदुपयोग किस तरह से करें, जिससे कि आत्मदर्शन हो सके, ऐसा ना हो कि देह दर्शन में ही पूरा जीवन निकल जाए। इतनी सी बात है कुल। इस अनुप्रेक्षा का हमें क्या लाभ देना चाह रहे हैं आचार्य भगवंत, अगर ये विचार निरंतर बना रहे कि ऐसा ना हो कि ये देह बोझ बन जाए और इसका बोझा ढोते ही जीवन निकल जाए। नहीं, ये देह मंदिर की तरह हो और इसमें बैठी हुई चेतना देवता की तरह हो, तब एक मंदिर की जैसी सास संभाल की जाती है वैसी ही इस देह की सास संभाल करूं। लेकिन क्यों? क्योंकि इसमें बैठे हुए चेतना को मुझे देवता की तरह पवित्र बनाना है। इसलिए देवता की तरह अगर हम अपनी चेतना को पवित्र बनाएं तो यह देह उसमें निमित्त है और इसकी सेवा टहल उतनी ही करना जैसे कि मंदिर में बैठे हुए देवता की पूजा आराधना के लिए मंदिर को भी संभाला जाता है। बस इतना ही, जैसे कि नाव में बैठ करके समुद्र पार करना हो तो नाव को सजाने की आवश्यकता नहीं है, बस उसे निश्छिद्र बनाए रखने और अपने गंतव्य तक ले जाने की आवश्यकता है। ऐसे ही ये देह नाव की तरह, इसमें कोई छिद्र ना हो, इतना ही ध्यान रखा जाए। बाकी इसको सजाने में ही ऐसा ना हो कि यात्रा ही में मुझे स्थगित करनी पड़े। और आज तक अपन ने यही किया है कि देहाशक्तिवश या देह के अभिमान में देह का ही दर्शन करते करते पूरा जीवन व्यतीत हो गया, अपने आत्मदर्शन की यात्रा ही हमने शुरू नहीं कर पाई है, इसकी सेवा टहल में ही पूरा जीवन निकल गया। ये विचार हमारे भीतर अपने आप आना चाहिए ताकि इस विचार की दृढ़ता से और देह के प्रति जो हमारा व्यवहार है वो बदले और हम देह का सदुपयोग कर सकें। सदुपयोग इतना ही है कि मैं इसके द्वारा भगवान जिनेंद्र के और अपने पूज्य पुरुषों के प्रति विनय धारण कर सकूं, हाथ जुड़ सकें, किसी को परोपकार के लिए दान इत्यादि दे सकूं और इस देह से मैं तपस्या कर सकूं। देह से तपस्या होती है क्या? लगता तो यही है कि देह से तपस्या होती है। नहीं, देह तपस्या में कारण बनती है। देह से तपस्या मत करना, तपस्या तो आत्मा से ही करना, लेकिन देह को कारण बनाना, जैसे कि दूध को स्वादिष्ट और गर्म बनाने के लिए हम किसी बर्तन का उपयोग करते हैं, वो पहले गर्म होता है फिर उसके भीतर रखा हुआ दूध गर्म होता है, ऐसे ही यह देह हमारे तपस्या में कारण बनेगी जिसके माध्यम से हम अपनी चेतना को निर्मल बनाएंगे। देह से वैसी ही तपस्या करना जिससे कि चेतना निर्मल हो, देह से ऐसी तपस्या नहीं करना जिससे कि चेतना और मलिन हो। इसलिए चेतना की निर्मलता ही देह की तपस्या को ठीक ठीक बनाएगी, ये ध्यान रख करके देह का सदुपयोग करना चाहिए। अगर इतनी चीजें हमारे दिन भर ध्यान में बनी रहे, स्नान करते समय खूब रगड़ रगड़ के और बढ़िया सी साबुन लगा के नहाते समय ये ध्यान आ जावे, ये विचार आ जावे कि क्या कर रहा हूं, बस चलो मंदिर जाना है, पूजा करनी है, स्वाध्याय करना है, चार लोगों के बीच संगति करके अच्छी संगति में अच्छे विचार करना है, कहां इसमें घंटे भर लगा रहा हूं। सबके लिए है ये, जो व्यक्ति अपने देह की सेवा में ही दिन भर लगा देता है वो करे देह की सेवा, लेकिन ना भूले कि देह में बैठा हुआ देही हमारे उससे चूक ना जाए, क्योंकि वो साथ में रहने वाला है। ये देह तो अपना समय आने पर और मरण को प्राप्त हो जाने वाली है। एक बहुत बड़े विद्वान थे, पंडित थे, उनकी अपनी जीवन साथी उनके अस्वस्थ होने पर बहुत दुखी हो जाया करती थी। एक दिन तो उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो नाम कोई भी नाम ले लें अपन, आप कौन सा नाम लेना पसंद करेंगे विद्वान का, कोई भी ले लें। बनारसी दास जी थे, सदा सुखलाल जी थे विद्वानों में। तो उन्होंने कहा कि अगर इस देह को सदा सुख माना है तो ये देह तो मरने वाली है, रो लेना, खूब रो लेना जी भर के। और अगर सदा सुख कोई और है इस देह में रहने वाला तो वो तो ज्यों का त्यों रहेगा, इसलिए देह के मर जाने के बाद रोना मत। अगर दोनों को इस तरह से अलग अलग जाना है और देह में आसक्ति नहीं है, अपने आत्मा में आसक्ति है, तो हर्ष विषाद करने की आवश्यकता नहीं है। इतना बड़ा संदेश इस देह के प्रति आसक्ति घटित कम करने पर हमें अपने आप ही मिलने लगता है। कोशिश करें दिन भर के कार्यों में एक बार नजर दौड़ा के देखें कि कितने कार्य देह के संवर्धन, देह के पोषण और देह की सास संभाल में के लिए किए हैं, और कितने घंटे एक जरा सा कागज लेकर के और लिस्ट बनाने बैठ जाएं अगर कि मेरे दिन भर में कितने घंटे इस बात के लिए और कितने काम इस बात के लिए हुए हैं जो देह के इर्द गिर्द की हैं, कितना थोड़ा सा समय मैंने अपनी चेतना के विकास के लिए, चेतना की निर्मलता के लिए दिया है, कौन सा ऐसा कार्य किया है दिन भर में जो कि चेतना को निर्मल कर सके। बस अगर ये दो विचार अपने अंदर चलते रहें और चेतना की निर्मलता का ध्यान बना रहे और चेतना को निर्मल बनाने का ध्यान बना रहे और देह से अभिमान, देह से आसक्ति या देह से घृणा धीरे धीरे घटती जाए, तो ये अनुप्रेक्षा भी हमारे जीवन को, ये विचार भी हमारे जीवन को बहुत ऊंचा उठा सकता है। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हे गुरुवर,
संसार संयोग और वियोग या कि शुभ अशुभ कर्मों के फलस्वरूप निरंतर होने वाले राग द्वेष की परिणति है। यहां उस सब के बीच में मैं सोचता हूं कि कोई मेरा साथी सगा होगा, लेकिन वह भी नहीं है, क्योंकि मेरे अपने कर्मों का फल मुझे अकेले ही भोगना पड़ता है। कोई किसी के साथ हो सकता है, कोई किसी का सगा नहीं हो सकता। साथ तो सब संयोगी पर्यायों का है, लेकिन सगापन तो व्यक्ति का अपने स्वरूप के साथ ही होता है, अपने स्वभाव के साथ ही होता है। ठीक है, संसार क्षणभंगुर है, संसार में कोई शरण नहीं है, संसार में राग द्वेष है, कोई अपना नहीं है। कितना भी हम विचार करें, मन में एक विचार तो आता ही है कि ये जो शरीर है वो तो मेरा है, भले ही परमार्थ से मेरा ना हो, लेकिन व्यवहार से तो शरीर मेरा है। और उस शरीर के प्रति जो एकत्व का भाव है वो सहसा टूटता नहीं है। शरीर मेरे से भिन्न है, यह भी मेरे मन में विचार आता है, लेकिन अगले क्षण यह विचार आने के साथ साथ भाव ऐसा उत्पन्न होता है कि ठीक है कितने ही पृथक हो, लेकिन है तो मेरा। ये जो शरीर के साथ हमारा एक है, वो जो पृथक वस्तुओं के प्रति भी हमने एक लेख पने का अपने भीतर विचार बना लिया है, वो टूटना चाहिए। और यही अन्यत अनुपेक्षा का काम है। दो पृथक चीजें जब एक लेक हो जाती हैं तब उनको पृथक करना इतना आसान तो नहीं है। पहले तो उनको पृथक मानना ही बहुत कठिन है, फिर उनको पृथक करने की प्रक्रिया अपनाना, ये अन्यत अनुपेक्षा हमें यही समझाती है। जल पय ज्यो जियतन मेला पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। जैसे कि दूध और पानी मिक्सअप हो जाते हैं और ये समझ में नहीं आता है कि दोनों में क्या अंतर है, तब ऐसी ही स्थिति हमारे शरीर और शरीर से जो संबंध हमने निर्मित किए हैं उन सब के प्रति भी होती है, और एक ममत्व का भाव हमारे मन में निरंतर बना रहता है। पुराने जमाने में कहानियां पढ़ा करते थे, आज भी बच्चे लोग कहानियां पढ़ते हैं। कैसी कहानी पढ़ती कि वो एक राजा था और राजा ने एक तोता पाल रखा था, राजा बहुत शक्तिशाली था और फिर दूसरे बहुत सारे राजा उस पर जब जब भी आक्रमण करते थे तो कोई उसको जीत नहीं पाया, तो फिर एक व्यक्ति को मालूम पड़ा कि अरे राजा को मारने से नहीं बड़े मरेगा वो, उसका जो तोता है ना उस तोते में उसके प्राण है। ऐसा पढ़ते ना कहानी में, तो वो तोते में प्राण है तो तोता को पकड़ लिया, फिर तोते की गर्दन को दबाया तो राजा की गर्दन दबने लगी, फिर तोते की टांग को मोड़ा तो राजा की टांग मुड़ गई। ऐसे नहीं मरते बच्चे लोग, तो बड़ा मजा आता है उनको। ये क्या चीज है मैं सोचता हूं, ये तोते में प्राण है तो प्राण थोड़ी उसके तोते में होते हैं, वो तो मैंने मान लिया है। जैसे कि कोई व्यक्ति पैसे में ममत्व रखे तो क्या स्थिति बनती, तिजोरी में प्राण धरे, तिजोरी को खोल ले गए तो क्या कहते कि प्राणों की परी, कि अब गए। हमारे अपने प्राण भी इन संसार की पृथक वस्तुओं में रखे हुए हैं, अगर हम ऐसा कहें तो हम पर भी वही कहानी लागू होती है जो बच्चे लोग राजा की तोते में प्राण वाली कहानी पढ़ते हैं। तोते की गर्दन मरोड़ने से राजा का प्राणांत होता है, ऐसे ही ये भिन्न वस्तुएं जिनके अभाव होने पर मुझे लगता है कि जैसे मेरा ही प्राणांत हो गया। इतना एक हमारा इस देह और इस देह के आश्रित जो भी संबंध है उन सब के प्रति हो गया है। सहसा इन दोनों में अंतर है ये समझ में नहीं आता, और अगर अंतर समझ में भी आ जाए तब भी एक भाव बना रहता है कि कितने भी मेरे से पृथक हों लेकिन हैं तो सब ये मेरे ही, और इसकी वजह से घाटा सिर्फ इतना होता है कि मैं अपने स्वरूप को भूल जाता हूं। जैसे पेन और पेंसिल में दोनों के स्वरूप में अंतर ना मालूम हो और कोई पेन मंगाए तो उसकी जगह पेंसिल आ जाती, तो पेंसिल मंगाए तो पेन आ जाता, मोटा सा उदाहरण है। ऐसे ही अगर मेरे अपने स्वरूप और पर पदार्थों के स्वरूप में मुझे अगर अंतर समझ में ना आए, मैं उसमें भेद ना करूं या भेद ना जानूं तो क्या होगा, दोनों के साथ एक सा ही व्यवहार करूंगा। पर को पर जानना, स्व को स्व मानना, इतना यदि हम अभ्यास कर ले हुए, अभी तो हम पर को भी स्व जानते हैं, ये एक हमारी अपनी असावधानी है, ये विचार है सिर्फ हमारा, पर कभी स्व हुआ नहीं है। लेकिन मेरा अपना विचार है कि ये जो पर पदार्थ हैं ये मेरे हैं। पर कहां से शुरू होता है, शरीर से शुरू होता है। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता अधमा अधमा, ऐसा आचार्य भगवंतों ने लिखा। ये जितने भी संयोग हैं इन संयोगों के मेले में मेरी अपनी इंडिविजुअलिटी, मेरी अपनी पहचान बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि मैं अपने स्वरूप को ना भूलूं, उसकी भी मुझे फिक्र रहे, जैसी कि मुझे अपने देह की फिक्र हो जाती है, जैसे कि मुझे अपने पांचों इंद्रियों और मन के विषयों की फिक्र हो जाती है, उनमें कोई कमी ना आ जावे मेरे सुख सुविधा और भोगों भोग की सामग्री में, और मेरे जो परिजन पुरजन हैं उन सबके लिए भी मैं चिंतित होता हूं। सो ये सब व्यवहार से ठीक है, लेकिन सर्वथा यह ठीक नहीं है। मैं अपने स्वरूप को ना भूलूं, इन सब से अपने को पृथक मानूं, ये अभ्यास करना आवश्यक है। इतना ही है। एकत्व में हमने ये विचार किया था कि मेरा स्वरूप क्या है, अन्यत्व में मेरे से पर पदार्थ उनका स्वरूप क्या है, दोनों को जानना आवश्यक है। मेरा अपना स्वरूप अगर मैं भूल जाऊं तो भी मैं इस संयोगों के मेले में अपने को अलग से नहीं पहचान पाऊंगा, और यदि मैं पर पदार्थों के स्वरूप को ना जानूं तो उनमें भी अपनेपन का भाव उत्पन्न हो सकता है। देह को भी मैं अपना ही मान लूंगा, मेरा अपना स्वभाव तो जान लिया लेकिन देह का स्वभाव अलग है। तू चेतन अरु देह अचेतन, यह जन तू ज्ञानी, मिले अनादि जतन से बिछुड़े। बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, मिले तो ये अनादि काल से है, और इनमें मैंने इतना एक मान लिया है कि मैं अपने स्वरूप को ही भूल जाता हूं, इन वर वस्तुओं का स्वरूप भी भूल जाता हूं, अपना भी स्वरूप भूल जाता हूं, और दोनों को गड्ढमड्ड कर देता हूं जैसे कोई चीज घर में और नहीं मालूम हो तो एक दूसरे में गड्ढमड्ड हो जाती, तो फिर बाद में कहते कि भैया तुम तनक तो होशियारी रखते, जब तुमने सब गड्ढमड्ड कर दी, जे में थोड़ी मिलावट किया है, हैं? तो ऐसा कहते कि नहीं कहते। अपन से ज्ञानी कोई पुरुष कहता है कि देखो तुमने कैसे मिला के नल्ला सब दुनियों को, शरीर अलग है जो आत्मा अलग है, तो अपन को कैसा लगेगा? कह रही है तो वास्तव में सही बात, लेकिन दोनों के बीच में और इतना एक लेखपना हमारे विचारों में आ गया है कि हम सहसा दोनों में अंतर नहीं कर पाते। अगर हमें वो अंतर महसूस हो जाए तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आए बिना नहीं रहे। जह नाम को भी पुरुषों पर्दव मिनमती जानी दून चयदी तस्वे पर भावे नादून विनुंचदी नानी। ज्ञानी पुरुष ठीक वैसा ही व्यवहार करता है जैसे कि कोई व्यक्ति पर वस्तु को पर जान करके उसे छोड़ देता है, उसे ग्रहण करने का मिथ्या भाव नहीं करता, क्योंकि ग्रहण किए नहीं जा सकता है, पर तो पर है, उसे स्व बनाया कैसे जा सकता है। लेकिन मेरा अपना अहंकार, मेरा अपना ज्ञान, मैं तो इसको देह को अपना ही है, अपना ही बना करके रहूंगा, इस देह को मेरी ही देह है, ऐसा भाव हमारे भीतर आ जाता है। ज्ञानी पुरुष ऐसा भाव नहीं करता है, यह मेरी है लेकिन मेरे से भिन्न है, इसमें क्या बात? भिन्न है तो भिन्न के साथ तो भिन्न के समान ही, पृथक वस्तु के साथ तो पृथक वस्तु के जैसा ही व्यवहार किया जाता है, भली वो मेरी है। ऐसा हमारे अंदर भाव आना चाहिए। बहुत प्रसिद्ध घटना है कि धोबी के यहां से कपड़े धुला करके व्यक्ति लाया है, और जब उसको मालूम पड़ा कि जो हमने बुस्सर्ट पहन ली है वह हमारी नोई दूसरे की है, तो पहले तो रस्ते में उसको पहन के ऐसा जा रहा था कि देख लो चार जने की हमारी है और इतनी अच्छी है, हैं? और फिर बाद में मालूम पड़ा कि हमारी नहीं है। अब क्या करें, रास्ता में थोड़ी उतारी जाए, अब घर तक पहुंचे, लेकिन जब तक वो पहने हैं घर तक नहीं पहुंचा तब तक क्या मानता है? और मेरी नहीं है तो कोई देख न ले बे, हाँ? अब उसको दूसरे के दिखाने का आनंद नहीं है, पहले तो यह मेरी है ऐसा मान करके चार लोग देखे जाने कि ये चीज मेरी है आनंद आ रहा था उसमें, और अब मेरी नहीं है, यह मेरे से पृथक है, भिन्न है, किसी और की है, ऐसा भाव और विचार आते ही साथ फिर क्या हुआ? अब कोई देख ना ले, मैं व्यर्थ ही इस चीज में अहंकार कर रहा हूं कि ये मेरी है। कितना परिवर्तन हो जाएगा व्यवहार में, बहुत परिवर्तन है। फिर इसको नहलाने धुलाने की तो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि गंदी जा शरीर अपनों गंदो हो गए तो अपन को पसंद नहीं आएगा। लेकिन इसको सजाने में फिर अपना समय व्यर्थ नहीं करूंगा। फिर इसकी देखभाल में पूरा दिन, इसकी सेवा शुश्रूषा में व्यतीत नहीं करूंगा। फिर थोड़ी सी संभाल अपने परिणामों की भी करने लगूंगा। अगर अन्यत्व भावना सचमुच हमारे भीतर आ जावे तो ये परिवर्तन हमारे जीवन में घटित हुए बिना नहीं रहेगा। अभी तो पांच इंद्री मन के विषय और यह देह और देह से जो संयोग संबंध संसार में निर्मित हुए हैं, उन्हीं में ही उनकी ही संभाल में मेरा पूरा जीवन निकल जाता है। मैं इनको पर मानते हुए भी इनसे इतना एक हो गया हूं कि इनकी ही सास संभाल करता हूं और अपनी सास संभाल भूल जाता हूं। तो क्या करें, इन सबको उठा के फेंक देवे? भैया देखो, कहूं उठा के फेंको, नहीं जा सकता जी। तो साथ में रहेगी, साथ में रहेगी तो क्या करें? कितने अभ्यास करो कि देह मेरी नहीं है तो इसमें ममत्व न होवे और न ही इससे द्वेष भाव होवे। दोनों ही बातें, इसका तो सिर्फ उपयोग करो, तटस्थ होकर के उपयोग करो। ऐसे ही जितने भी संयोगी संबंध हैं उन सब के बीच में तटस्थ होकर के तटस्थता मूलक प्रेम बना रहेगा। फिर जो आसक्ति है, जो प्रेम है, वो नहीं रहे। इतना व्यवहार में बड़ा परिवर्तन है। बहुत छोटा परिवर्तन नहीं है, बहुत बड़ा परिवर्तन। प्राणी मात्र के प्रति जो सद्भाव है, जो प्रेम है, वह आसक्ति जनित नहीं है, वो दृष्टि में आ जाएगा। सब मेरे से भिन्न है लेकिन सब के प्रति मेरे मन में सद्भाव है, ये एक विचार है। और दूसरा ये है कि जे हमाए, जे हमाए, जे हमाए, तैसी बे हमाए, उनके कक्का के भी लड़का लगा देंगे। जीव जी उनके कहने जी, जो इस प्रकार का भाव है, ये सब आशक्ति का भाव है। और इस आशक्ति से प्रेत होकर के जो हम प्रेम भाव रखते हैं, वो तो संसार बढ़ाने वाला है। और प्राणी मात्र के प्रति जो सद्भाव है, वो तो हमारी चेतना को परिष्कृत करने वाला है। ये अवस्था घटित होगी अन्यत्व भावना के उत्पन्न होने पर। देखो अपने भीतर जांच करके कि ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि नहीं। अत्यंत तटस्थ होकर के भी संसार में रहा जा सकता है। जल से भिन्न कमल की जो कल्पना की गई है, वो कल्पना वास्तविक है, सिर्फ काल्पनिक नहीं है। ऐसा भी जीवन हो सकता है। इस देह को छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए इस देह में रह करके भी और इस देह से अपने आप को पृथक जानना और इसके साथ पृथक पने का ही व्यवहार करना। आई कथम अभी मृत्वा तत्व को तू हदी सन प्रथकत विलसंतम छंड माशमीकम। अमृतचंद आचार्य महाराज इतनी बड़ी घोषणा कर रहे कि तुम्हें अपने आत्मा के स्वरूप का वास्तव में दर्शन करना हो तो इस देह से अपनी आत्मा को पृथक जानने का 6 महाअभ्यास करके तो देखो, तुम्हें अपने आप ही अनुभूति होने लगेगी कि हां, मेरा अपना स्वरूप भिन्न है। या देह से पृथक पने का अभ्यास देह में रहकर के भी संभव है। जैसे कि सिंहासन पर बैठ करके भी भरत महाराज बन गए थे, लेकिन यह राज तो राम के आते ही उन्हें दे करके बन चले जाऊंगा, ऐसा भाव निरंतर बना रहता था। तो राज गद्दी पर बैठे हुए भी क्या कहते कि पादुकाएं रख ली थी उनने तो रामचंद्र जी की, वो प्रतीक है। खुद राज करते हुए भी उस राज से अलिप्त होकर के, ऐसे ही घर गृहस्थी चलाते हुए भी और उससे अलिप्त होकर के भी कोई रह सकता है क्या? है तो कठिन काम, लेकिन विचार है और श्रेष्ठ विचार है। आचार्य भगवंतों ने दिया है कि हाँ, कहीं भी रहें, इस देह के बीच रहें, संसार के बीच रहें, किसी भी अवस्था में रहें, लेकिन अपने स्वरूप को नहीं भूलें। तो फिर जो है, हम आसानी से इस सब के बीच रह करके भी और इससे पार निकल सकते हैं। ये विचार, वरना तो भूले ही हुए हैं। मंदिर में भगवान के सामने भी खड़े हो जाते हैं तो जानी भूल पाप के हम कुआए हैं। भूल जाते क्या? भूले तो हैं, लेकिन किस प्रकार की चीज भूले? अपना स्वभाव तो भूल जाते। मैं बड़े आदमी का लड़का हूं, मैं ऑफिसर हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं कमती पढ़ा लिखा हूं, मैं दुकानदार हूं। भगवान के सामने भी, सामायिक के दौरान भी ये भाव बना रहता है। ये जो संयोगी पर्याय जनित आचरण है उसमें परिवर्तन नहीं आता है। आचार्यों ने तो ये तक लिखा है कि कल्याण तब तक नहीं होगा जब तक ये मानोगे। पहले तो ये कहते कि पहले तो इस सब पर वस्तुओं का त्याग करो, पांच महाव्रत अंगीकार करो और मुनि बनो। और फिर कहते कि मैं साधु हूं, मैं मुनि हूं, इस भाव को भी छोड़ो। बताइए, मैं तो एकमात्र ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला हूं। ऐसा पर पदार्थों से भिन्न अपने स्वरूप का जब एहसास होवे तब ये अन्यत्र भावना आएगी। अकेले कहने से नहीं होएगा भैया कि जल पै ज्यो जिय तल मेला, कोई भिन्न भिन्न नहीं वे तो प्रथक जुदे धन धामा, क्यों हो एक मिल सुत रामा। ये सब एक मेरे कैसे हो सकते हैं जबकि मेरी देह भी मेरी नहीं है। मैं मानता जरूर हूं कि यह देह मेरी है, सो कदंच सही है। व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो ये देह मेरी है, मैं इसमें रहता हूं, लेकिन मेरा स्वभाव तो इससे भिन्न है। इतना इसमें क्या बात? ये भाव अपने अंदर बना रहे। वो अपन कहानी आपको याद है कि एक जो है शेर का बच्चा जो है अपनी मां से और बिछुड़ गया, और बहुत सारे जो गधे थे उनके बीच में वो रहने लगा और भूल ही गया वो कि मैं तो शेर हूं। अब ऐसा बहुत समय व्यतीत हो गया, जैसे गधों के ऊपर बोझा लादा जाता है ऐसे ही उसके ऊपर भी बोझा लादा जाता था। वो प्रसन्नता पूर्वक बोझा ढोता था। अब एक बार जो है पहाड़ के ऊपर जो शेर था उसने जब तलहटी में गधों के बीच में और शेर को देखा तो उसको बड़ा दुख हुआ। कह रही देखो ये क्या बात है? तो उसने जोर से दहाड़ लगाई और इसको आवाज दी कि कहां भूले हो तुम तो मेरे जैसे हो, आवाज करके देख लो। तो उस शेर ने भी जो गधों के बीच में बोझा ढो रहा था उसने भी जब आवाज लगाई तो बाकी सब गधे भागे कि ये तो खुद है। और जब वो उनके बीच में से निकल करके आया और तालाब के किनारे नदी के किनारे तो उस शेर ने कहा कि झांक के देखो। तो उसमें झांका तो उसको अपना रूप उसी शेर के समान जान पड़ा। ये तो प्रतीकात्मक घटना है। हम भी इसी तरह से इस देह को अपना मानकर अपने स्वरूप को भूल करके बोझा ढो रहे, जिंदगी निकल गई बोझा ढोते हुए और भूल गए कि मेरा तो स्वभाव इन सबसे भिन्न था। बोझा ढोने का स्वभाव नहीं था, कर्ता भोक्ता और स्वामी पने का स्वभाव नहीं था। मेरा तो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव था, जानने देखने का था, बिगड़ने का स्वभाव नहीं था। मैं तो बिगड़ गया, मेरी अपनी अज्ञानता और आसक्ति से ऐसा हुआ है। मैं अपने स्वरूप को जान करके और पर पदार्थों से भिन्न जान करके और उस रास्ते पर आगे बढ़ूं, ऐसी मेरे मन में जब उत्कंठा हो, भावना उत्पन्न हो, तब ये अन्यत्र भावना मुझे इस संयोगों के मेले में भी अलग पहचान बनाए रखने में सहयोगी बनेगी। रहना तो इन सब सहयोगी संबंधों के बीच ही है, इस देह के बीच ही है, लेकिन क्या मान करके रहना है? इतना ही मान करके कि मैं इन सबसे पृथक हूं, मेरा अपना स्वभाव इन सबसे पृथक है। मुझे अपने उस स्वभाव की तरफ दृष्टि देनी है, इन सब की संभाल में ही मेरा पूरा जीवन व्यतीत ना हो। इस तरह यदि हम अभ्यास करें, ये तो अभ्यास की चीज है भैया, हमने पहले कहा था कि जी अकेली सुन के और चले जावे की चीज नहीं है। ये तो सुनने के बाद स्वयं विचार करने और विचार करके और स्वयं उस चीज का अनुभव करने की चीज है। अंडरस्टैंडिंग कम विजुअलाइजेशन, जानना और जान करके देखना, महसूस करना, अनुभव करना, विजुअलाइजेशन करना कि हाँ वास्तव में है तो ऐसा ही। और जितना ज्यादा हम विचार करके इसको अनुभव में देखेंगे ला करके, वही अभ्यास कहलाएगा। तब फिर आनंद आना शुरू हो जाएगा। सबके बीच रह करके अभी तो हर्ष विषाद पूर्वक जीवन व्यतीत होता है, फिर सबके बीच रह करके आनंदित होकर के भी जीवन जिया जा सकता है। ये अन्यत्व भावना और एकत्व भावना दोनों ही हमारे लिए संसार के बीच और आसानी से कैसे अपना जीवन व्यतीत किया जाए इस बात की शिक्षा देने के लिए है। हम भूल गए हैं जो चीज, उसे हम याद करें, और जिस चीज जो हमारी नहीं है उसमें हमने अपने पने का जो भाव आरोपित कर दिया है उसे वहां से हटा ले। इतना अभ्यास, एक किसी चीज का अभ्यास करेंगे तो दूसरा होता हो जाएगा अपने आप ही। जे हमारा नहीं है, जे भी नहीं है, जे भी नहीं है, जे भी नहीं है, तो अपने आप कहां पहुंचोगे जो हमारा है। और अगर ये ध्यान में आ जाए कि जे हमारा है तो अपने आप बाकी सब चीजें अपने से पृथक हो जाएंगी। ये एकत्व और अन्यत्व दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस तरह से विचार करो, अपने स्वरूप का विचार करो, या कि पर पदार्थ हैं उन सबके पर बने का, और हम अगर विचार करते हैं तो हमारे स्वभाव की तरफ दृष्टि जाती। हमने याद नहीं आता, वो रविन्द्रनाथ टैगोर की घटना वो सुनाई थी कि नहीं सुनाई थी, पर वो इस समय पर बड़ी उपयोगी है, अपन को ध्यान में आ जाए। रविन्द्रनाथ ने, टैगोर ने गीतांजलि लिखी, जिसमें कि गीत लिखे भगवान के, जैसे अपन ने प्रभुपद पावन की स्तुति पढ़ते अपन ध्यान अतराई की, ऐसी जो है भगवान के गुणगान के लिए उन्होंने गीतांजलि लिखी। अब उनका जो पड़ोसी था वो था तो समझदार हो, लेकिन थोड़ा ईर्ष्या भी थी उसको कि ये बड़े प्रसिद्ध हो गए, इतनी छोटी सी भगवान की स्तुति लिखी और उसका अंग्रेजी अनुवाद हो गया तो विदेशियों ने जो है नोबेल प्राइज दे दिया उनको है? तो एक दिन जो है रविन्द्रनाथ उनको मिल गए तो उनसे कहा कि इतनी तो आपने गीतांजलि लिखी, इतने तो भगवान के गुणगान किए, कहूं देखो है भगवान का, अब तो बड़ा झगड़ा हो गया। बात तो सही है, अपन भक्ति लिखेंगे उनकी, वो देखो तक नहीं है, उसका गुणगान किया अपन ने, उसके बारे में पता नहीं कि कहां रहता है, कहां मिलेगा, कोई एड्रेस में एड्रेस है, मिल में कोई और जाना चाहे तो मिल सकता क्या? अब वो भी जरा विभूचन में पड़े थी तो गड़बड़ हो गई भाई। अब उनने घर से निकलना लिखा संस्मरण में कि उस दिन से घर से निकलना बंद कर दिया, क्योंकि वो फिर मिलेगा और मुस्कुरा देगा तो फिर लेने के देने पड़ते थे, बड़ी शर्म लगती थी कि बात तो सही है, जिनके बारे में गीत लिखे उनका साक्षात्कार तक नहीं हुआ। अब एक दिन ऐसा हुआ कि कितने दिन तक घर में रहेंगे, तो सोचा कि मुंह अंधेरे सुबह सुबह तो टहलने जाया करेंगे, न पड़ोसी देख पाएगा न और किसी से सामना होगा, बच जाएंगे। तो सुबह सुबह और घूमने के लिए निकले तो वहां पर अधिकांश जो पश्चिम बंगाल में और छोटे छोटे गरीब लोगों के जो घर हैं उनके सामने वो थोड़ा सा पानी का पोखर बना के रखते हैं जिसमें वो मछली पालते हैं और वही उनका अपना भोजन है। तो उस पोखर में तो थोड़ा पानी कीचड़ सब रहता है। तो ऐसे ही टहलते हुए जा रहे थे और सड़क के किनारे बने हुए पोखर में सहसा उनकी दृष्टि गई तो जल एकदम शांत था, कीचड़ नीचे बैठा हुआ था, ऊपर का जल स्वच्छ था और उसमें जो है पूर्णिमा का खिला हुआ चंद्रमा और वो चमक रहा था उसके भीतर, अद्भुत सन्नाटा खिंचा हुआ है, रात्रि का अंधकार है और चंद्रमा उस कीचड़ से भरे हुए उस पोखर में चमक रहा है। बस उसी क्षण अत्यंत आनंदित हो गए और आनंदित होकर के और घर वापस लौटे। जैसे कीचड़ में पड़ा हुआ चंद्रमा भी मन नहीं होता, ऐसे ही देह के भीतर और इस संसार में रह करके भी मेरी आत्मा अत्यंत निर्मल स्वभाव वाली है, वही परमात्मा अवस्था है मेरी। अब बताइए ये हो गया साक्षात्कार। हमारे अपने भीतर जो परमात्म अवस्था है, जो हमारे भीतर सामर्थ्य है अपने उस स्वरूप को प्राप्त करने की, उसका स्मरण आ जावे तो कैसा गदगद हो जाता है मन। जैसे चार चीजें बाहर की मिल जावे, संपत्ति मिल जावे तो कैसा आनंदित होते हैं। वो तो थोड़ा सा आनंद है, कल के दिन छिन जाएंगी, लेकिन ये तो एक बार स्वरूप की प्राप्ति होने पर फिर चिंती नहीं है, और ज्ञात हो जाने पर जैसा आनंद आता है वैसा आनंद अपने को प्राप्त होने लगेगा। फिर संसार के अभाव मुझे दुखी नहीं कर पाएंगे, और संसार में मिलने वाली चीजें मुझे ज्यादा अहंकारी नहीं बना पाएंगी, ज्यादा हर्ष की तरफ नहीं ले जाएंगी। संसार में मिले या न मिले वो तो सब कर्माधीन है, मुझे तो मेरी अपनी संपत्ति देखने में आ गई है, मैं उसे प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ